अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 29। और ये ख्याल रखिएगा कि बस आखिरी की क्लासेस हैं, शायद ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और लास्ट क्लास होगी और हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स तमाम। उसके अलावा फिर मैं कुछ छोटी मोटी टिप्स जरूर देता रहूंगा और मतलब अब जो टॉपिक्स हैं वो इतने बड़े नहीं है जिनको मैं पूरी पूरी क्लास का टाइम दूं। जो आगे जो क्लासेस होंगी, क्लासेस नहीं कहूंगा मैं उसमें, बेसिकली मैं आपको छोटी मोटी टिप्स दे रहा हूँगा, ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँगा, जो कि छोटे 5 मिनट्स 10 मिनट्स इस तरह से आ रही होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या होना है, आज की क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में एक सब मेन्यू दिया हुआ है पाथ का और उसमें पाथ से रिलेटेड कुछ आपको बहुत ही काम की चीजें दी हुई हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं मेन्यू कौन सा है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहां अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपके पास आ रहा है पाथ, एंड इस पाथ में आपके पास कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक जॉइन, एवरेज, आउटलाइन, स्ट्रोक। बहरहाल इस वक्त ये सब का सब जो है डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल्ड है? क्योंकि यहाँ हमने कोई पाथ नहीं बनाई हुई, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ। सो लेट्स मेक समथिंग। मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया और अब मैं ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जा रहा हूँ, पाथ में। सो ये तो आप लोगों को मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारी पेन टूल वाली क्लास थी जिसमें जॉइन एंड एवरेज आप लोगों को मैंने बताया था। अगर ये आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर मैं यहाँ ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा आपकी पेन टूल वाली जो क्लास है। ठीक है, नाउ आउटलाइन स्ट्रोक। अच्छा, आउटलाइन स्ट्रोक क्या करता है कि अगर आप को याद हो तो हमने एक पाथफाइंडर वाली क्लास में हमने ये किया था कि स्ट्रोक्स को हमने कन्वर्ट किया था फिल में, मतलब हमने एक्सपैंड किया था। सो अगर आप एक्सपैंड करते हो तो यहाँ से आपको ये पूछता है कि जी क्या करना है, एक्सपैंड स्ट्रोक करना है या फिल करना है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली आपको पता है कि सिर्फ स्ट्रोक को ही आउटलाइन में कन्वर्ट करना है या इसमें शेप में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली जाकर के पाथ में जाएं और आउटलाइन स्ट्रोक कर दें। ये आपसे बगैर कुछ पूछे आपको फिल में कन्वर्ट कर देगा। सो अगर मैं अब इसको रिसाइज करूं तो सीधा ये आपका साथ साथ रिसाइज हो रहा है। आउटलाइन स्ट्रोक इज सिंपली एक्सपैंड, लेकिन सिर्फ स्ट्रोक्स के लिए। ठीक है, ओके, मैंने अंडू कर दिया है और हम वापस अपने स्ट्रोक पर आ गए हैं। ऑफसेट पाथ, ये भी आप लोग पहले देख चुके हो बट मेरा बताना यहाँ पर जरूरी है। ऑफसेट पाथ में जब मैंने पहले बताया था तो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया था, या हो सकता है कि लोगों ने शायद इतना इसको इम्पोर्टेंस ना दी हो, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा मैं यूज कर रहा था, बहुत सारी चीजों में बहुत काम आता है। तो मिसाल के तौर पर जैसे ये मेरा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं एक तो बना सकता हूँ, दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप पाथ में जाके ऑफसेट पाथ कर लें। अब ऑफसेट पाथ में आपके पास जो लास्ट आपने वैल्यू डाली होगी बहरहाल वो आ रही होगी, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। देखें, आपके पास एक एक्स्ट्रा एक दूसरा रेक्टेंगल आ रहा है, कितना बड़ा चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हैं। ना ऑफसेट में जो ये 15 पॉइंट्स, अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर 15 पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स के 15 पॉइंट्स तमाम साइडों से। ठीक है, एंड इसको अगर आप ओके करें तो ये आपके पास एक और कॉपी जनरेट हो गई जो कि बड़े साइज में थी। नाउ ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ आप रेक्टेंगल या सर्कल पे लगाएं, आप किसी भी तरह का शेप रख लें। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ओवल बनाया एंड लेट्स से वही हमारा अंडे वाला शेप अगर मैं रख लेता हूँ और मुझे इसके गिर्द एक बड़ा शेप चाहिए या इससे छोटा चाहिए, दोनों सूरतों में हम यहाँ से ऑफसेट पाथ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो प्रीव्यू ऑन कर लें, ये इस वक्त 15 पॉइंट्स बड़ा दे रहा है, अगर मैं माइनस में जाऊं तो ये छोटा दे रहा होगा। ये काफी ज्यादा काम आता है हमें कई चीजों में कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एक आउटलाइन चाहिए होती है थोड़ी सी बाहर, तो उसमें ये हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपके पास ये हुई है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। अच्छा, ये ऐसे सच तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमारी स्ट्रोक्स वाली क्लास थी उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पास ये जो स्ट्रोक्स का पैनल है इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है एरोज का। सो लेट्स से मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था राइट, और एंड यहाँ पे किया है, सही। सो यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखिए इसको ये पता है इलस्ट्रेटर को कि यहाँ से स्टार्ट लिया था, यहाँ से एंड लिया था, या जो भी यहाँ से स्टार्ट लिया हो यहाँ पे एंड हो, अगर मुझे पाथ को रिवर्स करना है तो मैं अपनी ये लाइन को इसी तरह से रखना चाह रहा हूँ लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एरो हेड यहाँ आ जाए और ये जो इसका बैक पार्ट है ये यहाँ पर आ जाए। तो एक तो तरीकेकार ये है कि सिंपली यहाँ से आके चेंज कर लो। दूसरा एक तरीकेकार ये है कि अगर आप यहाँ से जाएं और रिवर्स पाथ डायरेक्शन कर दें तब भी ये हो जाएगा, ठीक है जी। सो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये खुद एडजस्ट कर सकता है कि लाइक जिसको आप चेंज करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। देन आपके पास यहाँ पर आ रहा है सिंप्लीफाई। ओके, ये है बहुत ही मजेदार, बहुत ही काम की चीज। कई मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पेन टूल से कुछ भी चीज बना रहे होते हैं और बेतहाशा हम एंकर पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये पता नहीं क्या है, आलू है, ठीक है जी, मैंने ये एक आलू बनाया एंड इसमें इस वक्त अगर आप देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको दिखाऊं तो बहुत सारे एंकर पॉइंट्स हैं। नाउ मैं ये चाह रहा हूं कि एंकर पॉइंट्स कम हो जाए, ठीक है, और पाथ सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई से मुराद पाथ थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी और ये जो इतने ज्यादा एंकर पॉइंट्स हैं ये कम हो जाए। तो आप सिंपली यहां से जाए पाथ सिंप्लीफाई एंड प्रीव्यू। अब देखें, जाहिर है जब हम इसके एंकर पॉइंट्स कम करेंगे तो शेप तो थोड़ा सा बदलेगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओरिजिनली यहाँ पे 32 पॉइंट्स है और अब करंटली यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, बट हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो कर्व प्रिसिशन मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, लेट्स से 89% पे, अब यहाँ पर 20 पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर ये दी हुई है एंगल थ्रेशोल्ड, इससे खैर आपको इतना ज्यादा वो डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन असल चीज यहाँ से आपकी जो ये कर्व प्रिसिशन है इससे ही आपका बहुत हद तक जो है काम हो रहा होता है। सो यहाँ पर देख लिया करें, लाइक ओरिजिनली हमारे 32 पॉइंट्स थे एंड यहाँ पर अब करंटली जो है हमारे 11 पॉइंट्स है। प्लस यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन्स, आप वही चीज स्ट्रेट लाइन्स में, कोई कर्व्स नहीं आ रहे होंगे ऑब्वियसली, हमें ये नहीं चाहिए है, लेकिन हाँ ये एक ऑप्शन अच्छा है कि शो ओरिजिनल, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ओरिजिनल से आपका कितना ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो इसको ऑन रख के हम यूजुअली काफी हद तक बेहतर शेप निकाल सकते हैं। सो आई थिंक इतना सही है, 32 पॉइंट्स कन्वर्ट हो गए 10 पॉइंट्स में, इसको आप ओके कर दें। याद रखिएगा ये सिर्फ शो कर रहा है इसी दौरान जिस दौरान आप ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैं जैसे ही ओके करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका, एक्स्ट्रा जितने भी एंकर पॉइंट्स थे वो सारे गायब हो गए, ठीक है जी। एंड हाँ, शेप मेंटेन रहा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। नाउ हमारे पास सिंप्लीफाई के बाद आ रहा है एड एंकर पॉइंट, ये भी अगेन मैंने जैसे कहा था ये पूरा मेन्यू बड़ा काम का है, कुछ छोटी छोटी सी चीजें जरूर हैं लेकिन है सारी काम की। सो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और इसमें आप सबको पता है कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं। मैं इनमें मजीद एंकर पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ, कितने वो देखें अब आप। सो यहाँ से मैं जैसे ही जाता हूँ ऐड एंकर पॉइंट्स करता हूँ, ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा कितने ऐड करने, कहाँ ऐड करने, ये बस हमेशा आपकी जितनी पाथ हैं उनमें एक एक एंकर पॉइंट्स ऐड कर देगा। सो अब हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स ऐड हो गए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ यूं हो चुका है, ठीक है। अब आपको मजीद एंकर पॉइंट्स चाहिए, इसको सेलेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट पाथ ऐड एंकर पॉइंट्स। सो ये देखें अब आपको यहां पर इसने, सॉरी ये वाला और ये वाला एंकर पॉइंट्स ऐड करके दे दिया। सो इन शॉर्ट आप यूं समझ लें कि आपके जितने भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं उन सब पर ये पॉइंट्स ऐड करना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली मैंने कोई बहुत ही बेतुकी सी चीज बनाई है, बट आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो इजीली समझ में आ रहा होगा कि हम बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत यानी दो एंकर पॉइंट के बीच में जो जगह होती है वहाँ एग्जैक्ट सेंटर में ही आपको हमेशा एक एंकर पॉइंट डाल के दे देगा। आप जितनी बार इसमें ऐड करते रहोगे ये मजीद एंकर पॉइंट्स ऐड करता रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक पाथ है, यहाँ पर देखें इसमें मैं पहले तो ये बता दूं रिमूव एंकर पॉइंट्स, ये बड़ा ही मजेदार सा काम कर रहा होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास किसी पाथ पर पॉइंट्स ज्यादा हैं या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स मुझे डिलीट करने हैं। अब लेट्स से ये शेप भी कुछ डिफरेंट सा इस तरह से है, मैंने बे तो किसी चीज बना दी है कुछ, एनीवेज मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितने ये और ये वाले तीन पॉइंट्स हैं ये रिमूव हो जाए। सिंपली आप इनको सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, path and remove anchor point. ये बिल्कुल वैसे जैसे मैं pen tool से एक एक point पे जाकर के minus करूँ, सही है? तो ये भी वही काम कर रहा है, आपने जितने points select किए होंगे उन सब को ये remove कर देगा. That's it, simple. ठीक है जी, next जो आपके पास आ रहा है divide objects below. अच्छा अब देखें यहाँ पर मैं बिलफर्ज मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए, ठीक है, एंड मैंने सिंपली एक पाथ यूं बना दी लाइन और मैं एक्चुअली इन सबको एक साथ काटना चाह रहा हूँ. ऑफकोर्स हम इनको सेलेक्ट करके डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए डिवाइड अगर मैं करूंगा तो ये भी ओवरलैपिंग पाथ हो रही है जो पाथ फाइंडर में हमारे पास डिवाइड है वो सबने आपने देखा हुआ है. यहाँ मैं दिखा दूं, लेट्स ओपन पाथ फाइंडर, ये रहा. और अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं तो हाँ डिवाइड जरूर होगा, लेकिन याद रखें कि ये सारी जो जितनी ओवरलैपिंग पाथ थी सब डिवाइड होंगी, राइट? मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये करना था कि मैंने जो ये लाइन डाली है बस इस लाइन पर ये तीनों शेप्स कट जाएं, सही है? अब आपने करना ये कि सिर्फ इस लाइन को सेलेक्ट रखना है एंड ऑब्जेक्ट में जाके पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, इस चीज का ख्याल रखना कि ये समता तमाम तर जितने भी शेप्स होंगे नीचे उन सब को काट देगा. सो सी दिस, जैसे मैंने डिवाइड किया और अब आके देखें आप ये सारे इस तरह से कट चुके हैं. सो अगर आप चाहें तो इनको इकट्ठे यूं मूव करके देख लें, ठीक है जी. सो सी दिस, सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा पाथ का मेन्यू. एंड इसमें एक चीज ये है स्प्लिट इनटू ग्रिड, इतना ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन कभी कभार मैं कुछ ग्रिड्स बनाने में यूज कर लेता हूँ. सो अब कोई भी आप शेप रखें बट ज्यादातर ये रेक्टेंगल्स के लिए ही या स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए होता है. ग्रिड क्या होती है, आप अपने कुछ ग्रिड बनाना, मैं ग्रिड को क्या समझाऊँ आपको, क्या होती है जैसे ग्राफ पेपर होता है एंड वैसे तो यहाँ इलस्ट्रेटर में यहाँ पर हमारे पास शो ग्रिड भी है. यूजुअली मैंने अभी तक आप लोगों को यहाँ शो नहीं किए बट आई डोंट नीड टू सी दिस, मुझे ये वाली ग्रिड नहीं चाहिए, मैं अपनी ग्रिड बनाना चाह रहा हूँ. एंड लेट्स टर्न दिस ऑफ, हाई ग्रिड. नाउ लेट्स से मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ, राइट? और इस रेक्टेंगल पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी इस साइज में मैं एक ग्रिड बना लूं. अब ग्रिड किस तरह से होगी, स्प्लिट इनटू ग्रिड पे जाएं, जैसे आप जाएंगे ये आपसे कुछ पूछेगा कि जी कितने रोज चाहिए और कितनी कॉलम्स चाहिए. सो आप जैसे ही यहाँ रोज बढ़ा रहे हैं या कॉलम बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी जिस तरह से एक स्क्वायर बॉक्सेस वाली कॉपी हुआ करती थी मैथ्स के लिए, ये वैसी बन जाएगी. एंड अगर आप चाह रहे हैं कि जी इसमें स्पेसिफिक कोई हाइट या विड्थ देना चाहें तो वो दे सकते हैं. प्लस यहाँ पर एक और जो सबसे अच्छा काम दिया हुआ है दैट इज गटर. गटर क्या होता है, इन बॉक्सेस या कॉलम्स या रोज के बीच में जो स्पेस है. सो फॉर एग्जांपल मैं 5 पॉइंट्स का गटर यहाँ दे रहा हूँ एंड 5 पॉइंट्स का गटर यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है जी. अब अगर आप गौर से देखें, सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास बीच में गैप्स आ गए, प्लस आप एड कर सकते हैं मजीद गाइड्स. सो इसको ओके कर दें तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास गाइड्स भी हैं, बहुत बारीक बहुत थिन सी गाइड्स हैं, बट ये बहरहाल मूव हो सकती हैं गाइड्स, ठीक है. आप चाहें तो ये अपनी गाइड्स को लॉक कर दें या इनको जो भी आप करना चाहें. सो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड लॉक सिलेक्शन. और अब आप चाहें तो इन बॉक्सेस को हटा दें. नाउ इसका फायदा क्या है, ये जब हम डिजाइन की थ्योरीज पे जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को लेआउट्स वगैरह में भी इनका यूसेज बताऊंगा. अभी के लिए बस ये समझ लें कि हम अपने पर्सनलाइज किस्म की गाइड्स यहाँ से बना सकते हैं, यानी ग्रिड अपनी पर्सनलाइज किस्म की बना सकते हैं, ठीक है. सो आई होप ये भी आप लोगों को काम आएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के आएगा. क्लीन अप, यार ये बहुत जरूरी है. आप कभी भी कोई चीज़ बनाएं, लाइक यूजुअली जब नए स्टूडेंट्स होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर हमारे पास जो एक फिल है और एक स्ट्रोक है, समटाइम्स कभी कभार बेध्यानी में ये सब कुछ नन हो चुका होता है और हम बनाए चले जा रहे होते हैं और चीज़ें बनती जा रही होती हैं लेकिन दिख नहीं रही होती. अब याद रखिएगा ये आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कलर फिल नहीं है, सही। एक और गलती होती है कि कई बार हम पेन टूल से या कोई चीज बना रहे होते हैं एंड फिर हम डिसाइड करते हैं कि जी नहीं बना रहे, हाँ हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट मैंने किया लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पर एक सिलेक्शन आ रही है, ये एक एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है। समटाइम्स हम किसी ऑब्जेक्ट को भी बड़ा गलत तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया एंड सी कुछ एक्स्ट्रा पाथ्स यहाँ पर आ रही हैं। अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ, ये सबको पता है कि कंट्रोल वाई क्या होता है, ये आपका आउटलाइन मोड है, ये कहलाते हैं स्ट्रे पॉइंट्स। ठीक है, ये आपकी होती है नॉन कलर या एम्प्टी पाथ एंड एक और चीज होती है एम्प्टी टेक्स्ट पाथ। नाउ एम्प्टी टेक्स्ट पाथ क्या होता है, समटाइम्स हमने टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, एंड टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमने सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ कर्सर तो ब्लिंक कर ही रहा है, राइट, अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूं तो देखो ये एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है, सो इसको भी मैंने हटाया नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर अब बनी हुई हैं लेकिन यह दिख नहीं रही और इनका कोई पर्पस भी नहीं है, इन सब चीजों को साफ करने के लिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है क्लीन अप। जैसे आप क्लीन अप में जाते हैं, देखें एक आ रहा है आपके पास स्ट्रे पॉइंट्स, स्ट्रे पॉइंट्स वो जो खाली एक एंकर पॉइंट हवा में रह गया कहीं, राइट, डिलीट नहीं हुआ। एक अनपेंटेड ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल वैसे जैसे मैंने स्क्वायर्स बनाए थे या रेक्टेंगल्स बनाए थे लेकिन उसमें कोई फिल या स्ट्रोक नहीं था, ये आपके अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है एम्प्टी टेक्स्ट पाथ, सही है, ये सब पे चेक लगा हुआ है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि नहीं जी मुझे खाली स्ट्रे पॉइंट्स डिलीट करना है तो आप ये ऑन कर लें, लेकिन यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा कि तीनों को आप सेलेक्ट रखें और ये देखें ऊपर क्या कह रहा है, डिलीट करने वाला है ये, राइट, सो ओके करें। आपका तमाम तर जो एक्स्ट्रा डेटा था जो बिला वजह का आपके आर्टबोर्ड पे जगह घेरे हुए था, कई मतलब है स्ट्रे पॉइंट्स की वजह से सिलेक्शन बड़ी अजीब सी होती है कि हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं छोटा सा ऑब्जेक्ट लेकिन बाउंडिंग बॉक्स आ रहा होता है बड़ा सा, क्यों, क्योंकि वो नीचे कोई स्ट्रे पॉइंट बैठा हुआ होता है, सही। सो हाँ, कभी आपको लगे कि यार कुछ एक्स्ट्रा चीजें बिला वजह आई हुई हैं तो ये क्लीनअप एक बार चला लिया करें। सो आई होप आप लोगों को ये पाथ का मेन्यू पसंद आया होगा, मतलब समझ में आया होगा, पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है लेकिन समझ में जरूर आया होगा। और ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।